था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आज आप सुन रहे हैं सिंधी वाली की लिखी कहानी वंशलोचन। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती बोलेरो गाड़ी जिस गति से आकर बस बिट्टी के पास रुकी, उसी गति से सामने वाले चाय की दुकान पर चल रहा ताश का खेल रुक गया। ताश की पत्तियां हाथ में लिए किसी ने गर्दन घुमाकर, तो किसी ने माथा उठाकर, तो किसी ने आंखें गड़ाकर देखा कि ये चमचमाती गाड़ी इस गांव में किसके घर जाएगी। गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले ही वहां बैठे लोगों के मन में एक मानचित्र उभर आया। गांव में ऐसे कुछ ही घर हैं जहां ये गाड़ी जा सकती है, या ये भी हो सकता है कि आगे का रास्ता पूछने गाड़ी यहां पर रुक गई। लोग अनुमान की उलझी डोर सुलझा ही रहे थे कि गाड़ी से मनमोहन बाबू रोबीले अंदाज में नीचे उतरे। बीच वाले दरवाजे से दनादन तीन लोग निकल आए, कोई एकदम झक झक उजला कुर्ता धोती में, तो कोई पैंट शर्ट पहने थे। गाड़ी से नीचे उतरे वे लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन सबसे अधिक मुस्कान मनमोहन बाबू के चेहरे पर खिल रही थी। वो आगे आगे बढ़ने लग गए, बाकी लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि आगे का रास्ता गली नुमा। ताश की पत्तियां हाथ में लिए एक ने कहा, अरे ये तो दिनेशवा के मामू हैं। दूसरे ने झट से अंदाजा लगाया, तब तो जरूर शादी ब्याह का मामला है, तभी इतनी तड़क भड़क से आए हैं। तीसरे ने भी इन दोनों के साथ अपने अंदाजे का तीर छोड़ा, हाँ हाँ हाँ, वो दिनेशवा जो बैंक में बड़का अफसर बन गया है, उसी का बरतुहार लेके आए होंगे। मनमोहन बाबू जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, दुकान पर उनकी चर्चा वैसे वैसे बढ़ती ही जा रही। हाँ भाई, मामू हो तो इनके जैसा, अपने भी बैंक में बड़ा बाबू है, शहर में अपने पास रहकर दिनेशवा को पढ़ाया लिखाया और आज अपने से भी बड़का आदमी बना दिया, किसी ने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा। सुना है आजकल राम कृपाल दा के यहाँ खूब बरतुहार आ रहा है, पर उनका मन कहीं एक जगह बैठ नहीं रहा है, पता नहीं कैसी लड़की और कैसा परिवार खोज रहे हैं, किसी को हाँ हाँ ही नहीं कह रहे हैं। दूसरे ने कहा, ताश फेरते हुए तीसरे ने कहा, कभी लड़की का फोटो साड़ी में तो कभी सलवार कुर्ता में मांगते हैं, और तो और फोटो सादा और रंगीन दोनों, एक व्यंग करता हुआ बोला। हमको तो लगता है थाक भर फोटो जमा हो गया होगा। और किसी और ने ये भी कहा, अभी नौकरी लगे 6 महीने भी नहीं हुआ, पर बरतुहार है कि नाक में दम किए रहते हैं कृपाल दा के। जो कहो, पर हमें तो लगता है दिनेशवा के मामू के हिसाब से ही ब्याह होगा, आखिर आज तक उन्होंने इतना किया है, यही तो मौका है एहसान उतारने का, नहीं तो क्या राम कृपाल दा शहर में रख कर बेटे को पढ़ा पाते, वो भी यही उनकी तरह माथा पर बोझ ढोता रहता। वहां बैठे लोग ताश के पत्तों की तरह बात भी फेरने लगे। गली कुच्ची से होते हुए मनमोहन बाबू अपने बहन के घर पहुंच गए। खपरेल दरवाजा जहां 8-10 लोगों के बैठने भर की जगह थी, 4 हाथ हटकर सामने गाय नाथ के पास बैठी जुगाली कर रही थी, ठीक उसी के बगल में बछिया पूंछ से मक्खियां उड़ा रही थी। मनमोहन बाबू 1-2 सीढ़ी चढ़कर दरवाजे पर पहुंच गए, गौर से मुआवना किया। चौकी पर बिछावन लगा था और उस पर भागलपुरी चादर बिछी थी। बगल में 2-3 लकड़ी की पुरानी और प्लास्टिक की 4 नई कुर्सियां रखी हुई थी। थोड़ी राहत हुई, चलो कम से कम बिछावन तो लगा ही है, नहीं तो वर्षों पुरानी ये चौकी अपनी कहानी बताने लगती। उसी चौड़े मुस्कान से जो उन्होंने अभी तक अपने चेहरे पर टिकाए थे, साथ आए लोगों को बैठने को कहा और खुद घर के भीतर पर्दा उठाकर चले। भीतर पहुंचते ही सबसे पहले उनकी नजर अपनी बहन सुमित्रा पर गई। कुछ महीनों में ही उसका चेहरा बदल गया था। खुशी रंग रूप सब बदल देती है, पर घर के चारों तरफ देखकर मन ही मन सोचा इसका रूप बदलने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सुमित्रा हालचाल पूछने के बाद चाय बनाने की तैयारी करती हुई बोली, दादा आप तो कल आने वाले थे, हम तो वो बीच में ही बोल पड़े। हाँ कल आता, छुट्टी थी, पर बेटी के बाप को कितनी हड़बड़ी रहती है, तुम तो समझ ही सकती हो। पर सुमित्रा के चेहरे पर ये सुनकर कोई खास खुशी नहीं आई। वो खोलते चाय में इलायची पीस कर डालने लगी। चाय के साथ वही दालमोठ बिस्कुट मत भेजना, अब ये सब नहीं चलता है। चाय नाश्ते से भी लोग घर परिवार का अंदाजा लगा लेते हैं। मैं अपने साथ मिठाई और कुछ नमकीन लेता आया हूँ, मोहन बाबू सलाह देते हुए बोले। सुमित्रा बातों को आगे बढ़ाती हुई बोली, दादा हम तो बरतुहार से थक गए हैं, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि रोज कोई ना कोई आ ही जाता है, और वो है कि उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता है। पता नहीं कैसी बहू लाना चाहते हैं, बस यही कहते रहते हैं, एक ही बेटा है, ऐसी बहू उतारेंगे जैसी पूरे गांव में ना आई होगी, और लोग आंखें फाड़े देखते रह जाएंगे। मनमोहन बाबू को 100% लगा कि तब तो वो उसी लड़की का रिश्ता लाए हैं जिसे राम कृपाल बाबू अब तक ढूंढ रहे थे। लिफाफे से फोटो निकाल कर देते हुए बोले, लो पहले तो तुम ये फोटो देख लो, पसंद कर लो, फिर सबको दिखाना। लड़की क्या है, बस समझो कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का रूप है। इसके पिताजी मेरे साथ बैंक में है, बचपन से ही देखा है इसे, अभी एमए कर रही है, माँ नहीं है बेचारी की, पूरा घर यही संभालती है। सुमित्रा फोटो बहुत ध्यान से देखने लगी। मनमोहन बाबू बहन के चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश करने लगे, पर चेहरा था कि संशय का भाव लिए ही रहा। अब वो दान दहेज की चर्चा करने लगे, खाली हाथ तो आएगी नहीं, बाजार का भाव तो सबको पता है, प्राइवेट से सरकारी और सिपाही से लेकर आईएएस तक का रेट गाय चराने वाला भी बता सकता है। घर द्वार विहीन चौथी श्रेणी की सरकारी नौकरी 10 लाख दहेज से शुरू होती है, हमारा दिनेश तो पीओ है, पीओ। अपनी आवाज में थोड़ा सा अभिमान लाते हुए बोले, हमने तो उन्हें साफ साफ कह दिया लड़की अच्छी है इसलिए हम आपके साथ चल रहे हैं, पर पैसा कौड़ी के मामले में हम बीच में पड़ेंगे नहीं। जरा बातों पर जोर देते हुए बोले, 19-20 लाख तो दे ही देंगे। 19-20 लाख उनकी बातों का सबसे वजनदार बटखरा था जिसे उन्होंने तय होने वाले रिश्ते की तराजू पर रख दिया, और मन ही मन निश्चिंत होने लगे कि अब तो बात पक्की हो ही जाएगी। पर सुमित्रा भी इतने बरतुहारों को देखते देखते बात तौल तौल कर बोलना सीख गई थी। बोली, दादा मेरी हाँ या ना की क्या कीमत है घर के मालिकों के सामने, वो जो कहें। अरे वो क्या कहेंगे, मेरी बात आज तक उन्होंने काटी है। मनमोहन बाबू बड़े भरोसे के साथ बोल ही रहे थे कि उनके बहनोई राम कृपाल बाबू पधार गए। राम कृपाल बाबू भाई बहन के बीच के विषय को ताड़ गए, पर इतने दिन के घनिष्ठ पुराने रिश्ते में वो नई बात जो सुमित्रा के अलावा किसी को नहीं पता थी, उस बात को कैसे कहें, वो यही सोच रहे। बहनोई की कुछ देर की चुप्पी से मनमोहन बाबू के मन में शंका के अंकुर फूटने लगे। राम कृपाल बाबू, हम आपसे बाहर थोड़ी ही हैं, आज जो भी है सब आपका ही तो दिया हुआ है, आपके पास ही तो रहकर आज दिनेश बड़का आदमी बन गया है। मनमोहन बाबू को लगा कि बेकार में ही उनके मन में शंका होने लगी। अभी वो सशंकित मन को समझा ही रहे थे कि रामकृपाल बाबू जरा नरम आवाज में बोले, क्या है कि अब तो बीए एमए पास तो गांव टोले में बहुत सी लड़कियां आ गई हैं। ये अलग बात है कि कोई घर बैठे ही डिग्री ले लेती हैं और कोई पढ़ाई करके, पर कहलाती तो सभी एमए बीए पास ही हैं। मनमोहन बाबू के मन में इस बार शंका के अंकुर फूट ही गए। अब वो बहनोई की बातों की नब्ज थामने लगे। थोड़ा झुंझलाते हुए बोले, तो फिर कैसी लड़की लाना चाहते हैं, कहीं नौकरिया तो नहीं? ये प्रश्न रामकृपाल बाबू के चेहरे पर ठहर सा गया। वो हाँ ना कुछ नहीं बोले, पर कहते हैं ना, मौनम सहमति लक्षणम। यहां वही हो गया। मनमोहन बाबू ने लड़की वालों के सामने अपना बखान कुछ इस तरह से किया था कि लड़का उनकी बहन का नहीं, उनका ही है और ब्याह के करता धरता वही है। सो लड़की वाले भी इत्मीनान से थे, पर यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। ये बात ध्यान में आते ही मनमोहन बाबू थोड़ा गुस्से में आ गए और बोले, अरे कहिए, कुछ तो बताइए, कहीं तो मन स्थिर किया ही होगा। बहन बहनोई दोनों को असमंजस की स्थिति में देखकर उन्हें अंदाजा लग गया कि शादी की बात कहीं आगे बढ़ गई है। सुमित्रा वहां से उठकर अपने काम के बहाने चली गई। मनमोहन बाबू रिश्ते के बदलते रूप को देख रहे थे और सोच रहे थे, अच्छा और बुरा समय अपने साथ कई बदलाव लेकर आता है। ब्याह का मौसम शुरू होते ही सभी यही चर्चा करने लगते कि किस घर में बेटी ब्याह के लायक हो गई, किस लड़के की उम्र निकली जा रही। पर सबसे अधिक चोट इस बात पर रहती है कि फला लड़के का बर्तुहार क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ सभी उन बातों को छोड़ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर राम कृपाल दा के यहाँ इतने बड़े आदमी अपनी बेटी ब्याहने तैयार कैसे हो गए। जो भगवान में भरोसा करते थे उन्होंने मान लिया, जोड़ी भगवान ऊपर से ही बनाकर देता है। जो कुछ लोग मानते थे कि हो ना हो लड़का लड़की में पहले से ही प्रेम उरेम होगा, नहीं तो वही तो विरोधी पक्ष के थे। उनका तो मत साफ था कि लड़की में ही कोई खोट होगा, तभी यहाँ मुंह छुपाने चले आए। पर सबको इस बात का अचरज जरूर हो रहा था कि आखिर गोबर में पद्म कैसे फूट गए। आजकल राम कृपाल बाबू का चाल ढाल भी बदल गया है। पहले जहाँ सुबह शाम उठना बैठना होता था वहाँ अब कम ही नजर आते हैं। अब वो अधिकतर गांव के मुखिया, सरपंच और प्रतिष्ठित लोगों के दरवाजे पर देखे जाने लग गए। मतलब साफ है कि अब वो अपने को उन्हीं के स्तर का समझने लगे हैं। इधर उनका चाल ढाल बदला, उधर लोगों के देह की नोचनी बढ़ गई। एक दिन रामकृपाल बाबू शिवनाथ मास्टर साहब के यहाँ से सांझ को लौट रहे थे कि रास्ते में शंकर मिल गए। कुछ समय पहले तक शंकर और उनका खैनी से लेकर भांग पीने तक का याराना था, पर बेटी की नौकरी और खासकर जब से ब्याह तय हुआ, रामकृपाल बाबू शंकर के लिए द्वितीय का चांद हो गए। शंकर उनको देखते ही बोला, की हो दादा, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। का कहूं, बेटे का ब्याह कर रहा हूं ना, लगता है कि पैर में पहिया लग गया है, फुर्सत ही नहीं मिलती। यहाँ भी राम कृपाल बाबू बेटे के ब्याह की चर्चा का मौका छोड़ना नहीं चाह रहे थे। शंकर भी जताना चाह रहा था कि वो भी खबर रखता है। बोला, सुना है रिश्ता बहुत बड़े परिवार में हो रहा है। ये सुनते ही राम कृपाल बाबू का चमकता मुखमंडल और दे दीप्यमान हो गया। हाँ हाँ, अगले पूर्णिया को ही ब्याह है, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर की बेटी हमारे घर आई। चर्चा तो पूरे गांव में है, खूब गोदी में खिलाया है दिन सभा को, अब बहू के हाथ का पकवान खाने का दिन आ गया। शंकर उत्साहित होकर बोला। रामकृपाल बाबू अपनी गर्दन जरा अकड़ाते हुए बोले, खिलाती? अरे जरूर खिलाती, पर उसे समय कहाँ है। नौकरी करती है, हजारों कमाती है, बाप भी बड़ा अफसर है, उनके यहाँ तो खाने बनाने वाला अलग से है। अरे वो क्या खाना बनाएगी। रामकृपाल बाबू के बोलने का ढंग शंकर को अच्छा नहीं लगा। वो बस इतना ही बोला, तब तो बड़े घर की बेटी आ रही है, वंश सुधर जाएगा। हाँ वही समझो, कहते हुए रामकृपाल बाबू हवा में झूमते हुए चल दी। शादी में कुछ ही दिन बचे, तैयारी है कि पूरी ही नहीं होती। 3 कमरों के पक्के मकान को नया रूप दिया जा रहा था। वैसे तो वो नया घर बना लेते, पर समय की कमी के कारण पुराने मकान को ही नया रूप दिया जा रहा था। अब पैसों की कोई कमी नहीं थी, 19 से अधिक बिना मुंह खोले ही लड़की वालों ने इतना जो दे दिया था। रामकृपाल बाबू सोच रहे थे कि बहू तो कभी कभी ही आएगी यहाँ, इसीलिए नया घर शादी ब्याह के बाद आराम से बनवा लेंगे। इनके आंगन में और भी तो पट्टीदार थे, उनकी भी तो बहुएं थी, सबके सब मैट्रिक या उससे नीचे तक ही पढ़ी लिखी थी। उन बहुओं को बोलने बाजाने का तरीका भी नहीं पता, ना बाल बच्चों को ढंग से पालना पोसना जानती थी। कटोरे में दाल भात परोस देती, क्या सोचेगी ऐसा घर परिवार देखकर। पर कुछ ही दिनों की तो बात है, दूसरी बार बहू नए घर में ही आएगी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था, पर शादी में बहू के रहने लायक घर तो रहना ही चाहिए। पिछवाड़े जाकर चापाकल में खुले में नहाएगी, अरे क्या सोचेगी बाप कैसे घर में दे रहा है। एक नहाने वाला बाथरूम तो होना ही चाहिए, उसकी कोठरी से लगा हुआ। आजकल उजर का पत्थर लगा रहता है, एकदम चिकना चिकना रहता है, वही पत्थर लगवाएंगे। कोठरी में ठंडी हवा वाली मशीन भी लगवा देंगे। अरे बिजली रहे ना रहे, जब तक बहू रहेगी तब तक तो जनरेटर रखना ही पड़ेगा। पलंग इधर तो सोफा सेट उधर। वैसे तो अपने माँ बाप के घर से सब लेकर आएगी ही, पर तैयारी तो हमें भी करनी चाहिए। उसी का पैसा है, उसी पर खर्चा करना है, आज नहीं तो कल सब उसी का तो होगा। बिजली गांव में कभी कभार सांझ बाती दिखाने आ जाती, पर पूरे घर में राम कृपाल बाबू ने वायरिंग करवा दिया। पहले जहां तहां तार लटका रहता था, उसमें यहां वहां बल्ब झूलते रहते थे, पर अब हर जगह टीप टाप करने वाला स्विच लग गया है। बिजली की गति से सारा काम हो रहा है। बेटे की माँ सुमित्रा, वो भी तो सास बनने वाली थी, को एक ही चिंता लगी रहती थी कि साड़ी कपड़े किसकी पसंद से खरीदवाएं, किस शहर से खरीदवाए जाएं जो इतने बड़े घर की बेटी को पसंद आए, जेवर किस किस डिजाइन का लें। उन लोगों के जमाने में तो जान पहचान के सुनार से ही जेवर गहना बनवा दिया जाता था, पर सुना है कि अब कंपनी वाला जेवर आने लग गया है। सोचती है कि वही खरीद लिया जाए। याद आया दिल्ली में उसकी बहन की बेटी रहती है, उसी से कल फोन पर बात हुई। उसने कहा कि मौसी दिल्ली ही चली आओ, नए फैशन की साड़ी और जेवर खरीदारी में चांदनी चौक और सरोजनी नगर से करवा दूंगी। सुमित्रा घर आंगन घूम घूम कर देख रही है और मन ही मन बेटा के ब्याह का गीत गुनगुना रही है। ब्याह का कार्ड छप कर आ गया। रामकृपाल बाबू सबसे पहले भगवती स्थान जाकर दुर्गा माँ के चरणों में कार्ड चढ़ाए, फिर नाई को गांव के उन लोगों को कार्ड पहुंचाने के लिए कह दिया जो गांव के क्रीम या प्रतिष्ठित लोग। मन ही मन पति पत्नी ने तय कर लिया था कि उतने बड़े घर में बारात लेकर जाएंगे तो गांव के गिने चुने लोगों को ही ले जाएंगे, क्योंकि बारातियों के उठने बैठने कपड़े लत्ते के ढंग से इनकी भी इज्जत लड़की वालों की तरफ बढ़ेगी। जूता चप्पल तक देखा जाता है कि कैसा पहन कर आए हैं। बाकी लोगों को तिलक वाले दिन भोज भात खिला देंगे और कह देंगे कि इतनी दूर लोगों को ले जाना संभव नहीं हो पाएगा। बेटा अगर बैंक में अफसर नहीं बनता तो आज ये सुख नसीब नहीं होता कि इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़कर हम गांव, समाज, नाते, रिश्तेदारों के बीच छाती चौड़ी कर पाते। नहीं तो आज तक तो हम इनके बराबर नहीं थे। पर सुमित्रा की बातें भी बार बार उनके मन में घूमती ही रहती थी कि शादी ब्याह तो बराबर वालों के साथ होता है, हो ना हो कोई बात जरूर है, नहीं तो वो हमारे घर क्यों आते अपनी बेटी देने। हम तो उनके आगे कहीं ठहरते ही नहीं। इनके मन में भी ये बात खटकती जरूर थी कि कहीं लड़की में कोई खोट तो नहीं था या कहीं कुछ और। पर मन को ये कहकर समझा देते कि इतना बढ़िया मौका छोड़ना भी तो समझदारी नहीं है। गांव समाज में जो इज्जत मिल रही है वो तो है ही। इसके साथ एक और बड़ा लोभ छिपा था कि इसी बहाने वंश सुधार हो जाएगा। इतने बड़े घर की बेटी है, बाल बच्चों पर भी असर पड़ेगा ही और वंश सुधारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। हालांकि दिनेश इस शादी के लिए आसानी से तैयार नहीं हुआ, पर समझाने बुझाने के और वंश के नाम पर वो तैयार हो गया था। राम कृपाल बाबू आखिर हैं तो बेटे के बाप ही। कभी कभी ये सोच कर भी चिंतित हो जाते हैं कि बहू बेटे पर शासन ना करने लग जाए, पति वाला सम्मान ना दे, बड़े घर की बेटी है और ऊपर से नौकरिया है। पर इसे बेकार की चिंता कह तुरंत दिमाग से निकाल भी देते ये सोचकर कि जहां इतना सब कुछ मिल रहा है वहां एक आंख तो बंद करना ही पड़ता है। परसों तिलक, तैयारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। बाहर बेटे के पिता और घर के भीतर बेटे की माँ का पैर जमीन पर पड़ नहीं रहा। सुमित्रा आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रही है। कभी दिल्ली से आए लाखों रुपयों के कपड़े और जेवर सबको दिखा रही है तो कभी होने वाली बहू के गुणों का बखान कर रही है। हालांकि डर की एक बात उसके भीतर भी जल रही है, पर मन की शंका कहकर वो बार बार रसोई की डिबिया की तरह फूक मार कर बुझा देती है। पर बात ही है कि रह रहकर जल ही जाती है। राम कृपाल बाबू भीतर आते हुए हंसकर बोले, तुम्हारा सपूत अभी तक बच्चा ही है, अरे कल तो आ ही जाएगा और आज है कि मिनट मिनट पर फोन कर रहा है, बाहर हो हल्ला में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मेहमानों के बीच जरा गर्व से माथे पर आंचल रखते हुए सुमित्रा बोली, ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसा सीधा बेटा कलयुग में है जो मिनट मिनट पर फोन करता है, नहीं तो आज कल। राम कृपाल बाबू सुमित्रा को मोबाइल देकर बोले, लो तुम ही बात कर लो, देखो क्या कह रहा है, मैं जरा बाहर देखता हूं। सुमित्रा अभी बात कर ही रही थी कि तभी मनमोहन बाबू सब परिवार आ पहुंचे। सुमित्रा सब कुछ छोड़ अपने भाई के स्वागत सत्कार में लग गई। इधर कन्या पक्ष में लड़की के पिता के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी, एक जिम्मेदारी थी जो वो पूरी कर देना चाहते थे। कहा जाता है बेटी अपने से ऊंचे घर में देनी चाहिए, ऊंचा नहीं तो कम से कम परिवार बराबर का होना ही चाहिए। पर जिस घर में बेटी दे रहे हैं वो इनके सामने कहीं टिकता नहीं, बस एक लड़के की नौकरी है, दो चार बीघे खेत हैं, कहां ये इतने बड़े अफसर, पुश्तैनी जमीन जायदाद के मालिक। पर इन्हें भी कहीं मुंह छिपाना था, ब्याह वहां तय हो गया यही बहुत है, नहीं तो ऐसी लड़की अभी भी हमारे समाज में। कितना ही बेटी के नाम से अपना कपाट ठोक लें, पर थे तो बेटी के बाप ही। खरीदारी तो उन्होंने कर ली थी पर बेटी की पसंद से सामान लेना चाहते थे। ससुराल में दो चार दिन भी रहे तो उसे कोई कमी खले नहीं। पत्नी को बेटी की पसंद जानने के लिए भेजा ताकि आज सामान की खरीदारी कर सके। ये क्या, कुछ ही देर में पत्नी जैसे कुछ क्षणों में सब कुछ लुट गया हो जैसा भाव चेहरे पर लिए घबराती हुई आई और सोफे पर पसर गई। हड़बड़ाते हुए कौशिक बाबू ने पूछा, ऐसा क्या हो गया जो तुम बस यही होना बचा था। क्या वो शादी के लिए तैयार नहीं है क्या? लगा जैसे आकाश से लपलपाती हुई बिजली उनके ऊपर गिर पड़ी। उसने साफ साफ मना कर दिया, कहा संजू के साथ मैं लिव इन में थी, उसने मुझे धोखा दिया और आप भी तो वही कर रहे, मुझे कुएं में ढकेल रहे। उस लड़के के साथ मैं पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। नौकरी के अलावा उसके पास है ही क्या, ना व्यक्तित्व ना सामाजिक प्रतिष्ठा। बेटी ने जो कहा माँ जस का तस बोल रही। कौशिक बाबू के पसीने छूटने लगे। अब दो चार दिन शादी में बचा है और बेटी का ये तमाशा, सोचा भी नहीं था। एक बार शादी हो जाए, दोनों साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लड़का जरा सीधा है, इसीलिए आज के समय में भी बेटी का फोन नंबर लड़के को नहीं दिया कि कहीं फोन से दोनों के बीच बातचीत ना होने लग जाए और बेटी को लड़के के घर परिवार के बारे में सारी जानकारी ना हो जाए। बेटी को तो यही बताया था कि लड़के को गांव में और शहर में भी पुश्तैनी जमीन जायदाद है, ऊपर से नौकरी तो है ही नहीं, तो जो लड़की लिव इन में रह चुकी है उससे शादी के लिए कौन तैयार होगा। इतना बढ़ा चढ़ा कर बेटी को नहीं बताते तो वो भी शादी के लिए तैयार नहीं होती। पर उन दोनों के बीच बातचीत कैसे हो गई? पिता गुस्से में बोले और माथे पर हाथ रखते हुए पत्नी ने कहा, आज के जमाने में ये पूछते हो? अरे 100 तरीके हैं। अगले ही दिन तिलक है, आज ही दिनेश भी आने वाला है। घर रिश्तेदारों से भर गया है। रामकृपाल बाबू सिल्क का कुर्ता और परम सुख धोती पहने परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। सुमित्रा जो आज तक सूती साड़ी पहन दिन काटती रही, हजारों रुपए के सिल्क की साड़ी पहनकर खुशी से लगदक हो रही। रामकृपाल बाबू टिटोली करते हुए सबके सामने सुमित्रा से बोले, लो एक आध घंटे में अपना दिनेश आ जाएगा, मन भर के कर लेना बात। कि ठीक उसी समय मोबाइल फोन के स्क्रीन पर एक नंबर चमकने लगा, समधी साहब। अभी इस समय इनका फोन? भौहें थोड़ी टेढ़ी हुई जा रही थी, फिर सोचा अरे कल ही सगे संबंधियों के साथ तिलक चढ़ाने आ रहे हैं, कोई बात पूछनी होगी या इत्मीनान करना चाह रहे होंगे कि तैयारी कैसी है। रामकृपाल बाबू मोबाइल फोन का बटन दबाते ही प्रणाम पाती के साथ समधी साहब को निश्चिंत कर देना चाहते थे कि आप जो अपने सगे संबंधियों को लेकर हमारे यहाँ आएंगे तो स्वागत सत्कार में हमारी ओर से कोई कसर रहेगी नहीं, बस आप निश्चिंत होकर पधारे। इतना बोलने की तैयारी कर ही रहे थे कि उनके चेहरे पर खुशी की जगह पसीने की बूंद छल छलाने लग गई। वो बस इतना ही कह पाए, जरा एक बार फिर से कहें, शायद सुनने में कोई गलती हो रही है। फिर तो खुशी से चमकती आंखों के आगे अंधेरा छा गया, गला सूखने लगा। दीवार पकड़कर वहीं बैठ गए। दौड़ती हुई सुमित्रा आई और बोली, अरे ये क्या हो गया, अभी तो ठीक ही थे आप। राम कृपाल दा बस इतना ही बोल पाए, भीतर कोठरी में ले चलो। कोठरी में जो उनकी बात हुई उसके बाद तो लाखों रुपए के खरीदे गए जेवरों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। साड़ियों के झिलमिलाते सितारे टूटकर बिखरने लगे। भंडार से उड़ रही मिठाई की सुगंध वहीं स्थिर हो गई और सगे संबंधियों के कानों में भी बात चली गई। मनमोहन बाबू अपने बहनोई के चेहरे पर पानी की छींटे मार रहे थे। रामकृपाल बाबू बेहोशी में केवल इतना ही बोल रहे थे, दिनेशवा माई अब बदहवास सी सुमित्रा, कभी अपने पति का मुंह तो कभी अपने भाई का चेहरा देख रही थी। अभी आप सुन रहे थे सिन्नी वाली की लिखी कहानी वंशलोचन। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत कर रही थी निधि मिश्रा।